वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन पॉडकास्ट के साथ बेहजत चलानी। पल पल बदलती दुनिया, कल से आज और तब से अब तक के सफर का अहवाल। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से पॉडकास्ट का एक नया सिलसिला। इस सफर में हमारे हमराह रहिएगा। मैं तेरा नाम न लूं फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। जी हाँ, आज मेरे साथ मेहमान भी ऐसे हैं कि जिनका नाम ही उनका तारुफ है। मुस्तनसर हुसैन तारर से जब मैंने इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने की दरख्वास्त की तो दिनों यही सोच साथ चली कि उनके लिए क्या लफ्ज बोलूं जो उनकी शाया निशान हो। एक ऐसे मुसन्निफ जिनकी नजर और मुशाहदे से कुछ भी ओझल नहीं रहा। कभी वो उंदलस में अजनबी तो कभी हजारों रास्तों की बात करते हैं। निकले तेरी तलाश में तो फिर गारे हिरा में एक रात भी आई। कभी प्यार का पहला शहर तो कभी मॉस्को की सफेद रातें। और बहाव से लेकर खसो खाशाक जमानों तक किस किस का जिक्र करूं। मैं ये बातें करने लगूं तो मुस्तनसर साहब से आपकी मुलाकात कैसे हो, तो आइए उन्हीं से शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तनसर साहब आपके वक्त का, वॉइस ऑफ अमेरिका के पॉडकास्ट कल और आज में हमसे बात करने का। खुश आमदेद।
शुक्रिया।
तारर साहब, बात शुरू करते हैं। मुसन्निफ हैं, सफर के शौकीन हैं, कोह पैमा हैं, नावल निगार हैं, कॉलम निगार हैं, टेलीविजन होस्ट हैं, एक्टर हैं। आज आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो इन सारे कामों में किस काम को अपने दिल के सबसे करीब पाते हैं?
बेजत, मैं जब भी कोई काम करता हूँ जो क्रिएटिव हो तो मैं उस लम्हे उसी को सबसे अहम समझता हूँ। ये नहीं है कि नावल लिख रहा हूँ या अफसाना है या सफरनामा है तो किसी एक सिंफ को मैं इंजॉय करता हूँ, क्योंकि हर सिंफ के लिए मैं उसी जुनून में मुबतला होता हूँ जो क्रिएटिव जुनून होता है और वो तहरीर करता हूँ। तो इसलिए मैं वैसे पीछे मुड़ने का मसला भी नहीं, मैंने अभी आगे बहुत कुछ देखना।
आपने इतना काम किया है जो आमतौर पर एक जिंदगी में तो मुमकिन ही नहीं लगता। कई जिंदगियों पर मुहित काम है मुख्तलिफ शोबों में, कैसे कर लिया इतना कुछ? आपने बताया वैसे वाकई जुनून तो बहुत कुछ करवाता है, लेकिन फिर भी किस तरह से?
देखें, बुनियादी तौर पे मैंने और कोई काम नहीं किया, मैंने कोई कारोबार नहीं किया, कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके कहीं कोई मतलब अहम ओहदा नहीं हासिल किया, ऑफर्स भी हुई है नेचुरली, और मेरा कोई और कारोबारी हयात था नहीं। पूरी जिंदगी मैं प्रोफेशनल राइटर रहा हूँ। मेरे घर का जो अखराजात हैं वो मेरी किताबों की रॉयल्टी और मीडिया के जो भी पेमेंट होती थी उससे चलता था। चुनाचे मैं ये समझता हूँ कि मैं ऑलमोस्ट 65 ईयर्स हो गए हैं मुझे लिखते हुए और 55 हो गए होंगे मीडिया से मुंसलिक हुए, अगर जो 10 साल पेशतर मैं जरा मध्यम पड़ गया एज की वजह से। चुनाचे उस हिसाब से देखा जाए तो मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिखा।
अभी ज्यादा नहीं लिखा?
नहीं लिखा, क्योंकि मैं देखे ना, अब बहुत से राइटर ऐसे हैं, मतलब कृष्ण चंद्र की किताबें 70 से ज्यादा, मंटो साहब 44-45 साल की उम्र में फौत हो गए, उनकी 40 से ज्यादा है, टॉलस्टॉय की 100 से ज्यादा है
जी।
तो मतलब है कि जो बेदी साहब की आप देख रहे हैं, तो ये है कि मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन ये है कि मुसलसल लिखा है।
अच्छा, कल टेलीविजन पे आप सुबह के प्रोग्राम की मेजबानी करते थे और वाकई एक मुनफरिद अंदाज था उस प्रोग्राम का। जाहिर है कि उसके बाद उसकी एक रिवायत भी पड़ गई। आज भी मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर सुबह की नशरियात होती हैं। क्या कहेंगे कल से आज के इस सफर के बारे में, किस तरह से देखते हैं, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, इन सब के बारे में कुछ आप कहने की बिल्कुल बेहतरीन पोजिशन में है।
बेसिकली देखे, मॉर्निंग ट्रांसमिशन It just so happened कि I was the first morning transmission host। और ये जो pioneer लोग होते हैं ना, ये कोई इतने brilliant नहीं होते। होता ये है कि कोई moment of history होता है जिसमें वो शख्स वहां पे मौजूद होता है और वो चुन लिया जाता है। चुनाचे ये नहीं है कि मैं वो pioneers में हमारा नाम आता है तो वो सिर्फ इसलिए कि कोई moment of history था जिसमें हम present थे और वो spotlight जो है, जिस तरह मुझे अब तक याद है कि रॉयल अल्बर्ट हॉल में लंदन में एक न्यू ईयर ईव थी और मेरी गर्लफ्रेंड थी जैनिस, तो वहां एक बहुत बड़ी स्पॉटलाइट और वहां सैकड़ों कपल जो हैं वो रक्स कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ कि वो स्पॉटलाइट एंड हम दोनों पे आ गए। और हमें कोई अवार्ड वगैरह दिया गया, तो उसमें हमारा कमाल नहीं होता। यही मैं कह रहा हूँ कि वो स्पॉटलाइट जो है नसीब की, वो आप पे आगे ठहर जाती है। अब जो मॉर्निंग ट्रांसमिशन हो गए हो रहे हैं, वो उनका एक बदल गया है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू उनका जो रेटिंग है, उस हिसाब से उनका जो चेहरा है बदल गया है। मुझे उसमें कोई इतराज नहीं। मैंने अपने अहद में जो कुछ उस अहद की डिमांड थी या मेरे अंदर की ख्वाहिश थी, उसके मुताबिक वो प्रोग्राम किया। आजकल जो लोग कर रहे हैं, और इसमें वैजेद बड़ी अमेजिंग एक बात है, आपको खुश होना चाहिए
जी,
कि बेसिकली कोई मेल कॉम्पेयर ऐसा नहीं उभरा हमारे बाद जो डोमिनेट करता हो, फीमेल ज्यादा है।
हाँ जी, ये भी एक फर्क है।
लेकिन अब वो सिलसिला हो गया ना कि मॉर्निंग ट्रांसमिशन जो है मोर ऑफ ए फैशन शो और कुकरी शो और भांड शो हो गया। आप देखते हैं ना कि भाई मुख्तलिफ जो लोग हैं वो बड़ी जरूरी है कॉमेडियन तीन चार बैठाए हुए, तो वो उसका कॉन्सेप्ट बदल गया। हमारा जो नजरिया था कि वो कंपेयर ही नहीं, जो खुद अपने तई ऑडियंस के साथ मुखातिब होके उस शो को कैरी ना कर सके, उसको किसी और बिसाखी की, किसी ह्यूमर की, किसी और चीज की जरूरत नहीं।
अच्छा, 2022 वो साल है जब पाकिस्तान के क्याम के 75 साल भी पूरे हो जाएंगे। ये जो आगे बढ़ने की समत रही हमारे इस मुल्क की, आपके ख्याल में ये किस हद तक, मैं दुरुस्त का लफ्ज बोलूं या क्या कहूं, क्या कुछ ऐसा होना चाहिए था जो नहीं हो पाया, क्या मिसिंग देखते हैं आप?
अब मैंने पाकिस्तान बनता हुआ देखा है। I was 7 years old, जब मैंने लाहौर में अपनी पहली लाश देखी सड़क पे पड़ा हुआ, उसके सीने में खंजर, तो वहां से पाकिस्तान के साथ मेरी जो है एक मुसलसल एक अमल, उसके साथ मोहब्बत का, उसके साथ इश्क का, उसके साथ ओनरशिप का वो शुरू हुआ। तो अब मैं तो इतना जीनियस नहीं हूं, देखे ना कि आजकल पॉलिटिकल सीन पे कैसे कैसे शानदार जीनियस है। मैं अब उनकी, मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाहता, तो मैं उतना जीनियस नहीं हूं। मेरा ख्याल है कि अगर मुझे किसी एक पॉइंट पे फाग करना पड़े तो वो ये है कि वी नेवर लव्ड पाकिस्तान, हमने पाकिस्तान से मोहब्बत की ही नहीं है। हमें कतई तौर पर पता नहीं है कि ये कितना बड़ा है, ये बलूचिस्तान में कौन कौन से शहर हैं, यहाँ के उगता क्या है, इनकी फसलें क्या हैं। और दूसरी वो जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है ना कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तो अपनी जगह, लेकिन मुस्लिम है हम वतन के और सारा जहाँ हमारा, सारा जहाँ नहीं है, यही जहाँ है जो पाकिस्तान का है। जब तक आप इसकी आप इसको अपनी माँ नहीं मानते, धरती अपनी उसको कमिट नहीं करते दिस इज माइन, तब तक वो मुल्क आगे इसलिए नहीं जा सकता कि जिस चीज को आप रिस्पेक्ट नहीं देते, आप उसको मुकद्दस नहीं समझते, आप उसको खा जाएंगे ना। मतलब जिन लोगों ने इसको खाया, अगर ये माँ होती तो ना खाते ना, तो ये तो माले मुफ्त उनके हाथ आया। तो वी हैव नेवर लव्ड पाकिस्तान।
पाकिस्तान के टेलीविजन के लिए भी आपने मुतअद्दिद ड्रामे तहरीर किया। अब टेलीविजन की भी बात करें तो समझ में नहीं लगता कि कौन से टेलीविजन की, क्योंकि बेशुमार चैनल्स हो गए, एक जमाने में सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन था। लेकिन जो भी ड्रामे आपने लिखे, पजीराई बहुत हुई टेलीविजन में। जो टेलीविजन के ड्रामे का ये सफर है, चाहे अब वो एक चैनल का हो या दो चैनल का हो, या एक जमाने में था कि पाकिस्तान टेलीविजन चैनल के जो ड्रामे हैं उनकी मिसाल कोई और नहीं मिलती थी, लेकिन अब प्राइवेट चैनल में भी ये बात आ गई, बहुत सारे ड्रामा चैनल्स अलग से बन गए। तो इस ड्रामे का ये जो कल से आज तक का सफर आपने देखा है, आप इसके बारे में किस तरह से देखते हैं, इसको कैसे बयान करेंगे?
देखिए जी, पीटीवी ने ये नहीं है कि सारे क्लासिक ड्रामे पेश किए हैं, वो नॉस्टैल्जिया होता है और उसमें आप माइनस करते चले जाते हैं जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। पीटीवी ने ट्रैश भी बहुत प्रोड्यूस किया, फर्क सिर्फ ये था कि स्क्रिप्ट जो थी वो पैरामाउंट थी, वो इम्पोर्टेंट थी, और जो लिखने वाले थे तमाम क्रिएटिव राइटर्स थे, उनकी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा, आप जानते हैं। और उसके ऊपर मेहनत भी होती थी, मेहनत इसलिए होती थी कि प्रोड्यूसर सरकारी मुलाजिम थे, उनको कोई टाइम फ्रेम का कोई उनको फर्क नहीं पड़ता था कि एक ड्रामा वो चार दिन में प्रोड्यूस करते हैं या एक महीने में करते हैं। वेयरएज अब उसकी रिक्वायरमेंट और हो गई है, अब तो ये है कि ड्रामा आपने प्रोड्यूस करना है, इतने रोज में करना है, इतने दिनों के बाद उसने भाई जाना है। तो इस लिहाज से आई फील कि ये इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स आए हैं कि मतलब एट टाइम्स मैं आई एम रियली अमेज्ड जब कोई सीन आता है और मैं कहता हूँ, देखता हूँ, मैं अपनी बीवी को कहता हूँ कि देखो ये, मुझे इस एक्ट्रेस का नाम भी नहीं पता और किस तरह ये कैरी कर रही है। ये कोई रूही या उज़्मा से कम एक्ट्रेस नहीं है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम या इनकी ट्रेजेडी मुझे इन पे तरस इसलिए आता है कि द स्क्रिप्ट्स आर, अगर बहुत सॉफ्ट भी मैं कहूँ, दे आर रॉटन। मेरी बीवी अपना ड्राइंग रूम में बैठी देख रही होती, ड्रामा भी देख रही होती है, साथ बच्चों के साथ बात भी कर रही है फोन पे, और साथ वो आईपैड पे गेमें भी खेल रही है, तीन काम कर रही है। तो मैं जब जाता हूँ तो मैं 5 मिनट बैठता हूँ, जो भी ड्रामा होने और होता है उसमें एक दो एक्सेप्शन भी आई, तो मैं कहता कि तुम देखना कि 5 मिनट के अंदर अंदर या तो तलाक का लफ्ज इस्तेमाल होगा, या इसको तलाक हो जाएगी, या ये बंदा लड़की को थप्पड़ मारेगा, या इसको घर से निकाल देगा। बेजत ये कभी नहीं हुआ कि ये मैंने कहा और विद इन 5 मिनट्स ये सारा कुछ ना हो गया हो। चुनांचे जो स्क्रिप्ट्स हैं उनके ऊपर मेहनत इसलिए नहीं होती कि वो शायद मैटर ही नहीं अब करते, सिर्फ स्टार्स के ऊपर चलते हैं या मतलब प्रोडक्शन के ऊपर ड्रामे चल रहे हैं, बहुत अच्छे ड्रामे हो रहे हैं, नो कंप्लेंट्स। ये नहीं है कि आजकल वो कहते हैं जी फलां हमारे ये थे वो थे, लेकिन मुख्तलिफ चैनल्स पे बहुत अच्छे क्रिएटिव ड्रामे भी हो रहे हैं, यानी स्क्रिप्ट सबकी बोली नहीं होती, लेकिन ओवरऑल अच्छा। एक उसमें एक आखिरी बात मैं करूँगी, हमारे एक था कि ड्रामा जो था वो राइटर्स से पहचाना जाता था, मसलन अगर मेरा सूरज के साथ साथ है या हजारों रास्ते है या कोई भी मेरा सीरियल है, तो उसके ऊपर मेरा नाम आता था कि मुस्तनसर हुसैन तारण का हजारों रास्ते। अब मैं देखता हूँ कि राइटर गायब है, वो शायद वो लंबी सी जो पट्टी चलती है ना बहुत तेजी सी, जिसमें 150 नाम चल रहे होते, उसमें कहीं बारीक का लिखा होता, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ता कि किसने लिखा। चुनाचे राइटर की वो इम्पोर्टेंस खत्म हो इसलिए हो गई है कि ही इज नॉट रिक्वायर्ड एनीमोर।
आपका एक नॉवल है जिसका नाम बहाव है, इसे क्लासिक अदब में शुमार किया जाता है। ये वादी सिंध की तहजीब को उजागर करने वाला एक नॉवल है जिसमें आपने माहौल को दरपेश खतरात की अक्कासी उस वक्त की थी जब अभी ये मौजू आम सोच में नहीं आया था। क्या ख्याल आया था आपको इसको तहरीर करते वक्त, और आज अब ये तहरीर लगता है कि बड़े किसी इल्हामी असर के तहत लिखी गई है, तो इस तहरीर और इसके खतरों को हकीकत में बदलते देख कर आप कैसा महसूस करते हैं, कैसा लगता है? अच्छा तो बहुत लगता होगा कि आपने बहुत पहले ये बात कर दी थी।
नहीं अच्छा मुझे इसलिए नहीं लगता कि दैट्स व्हाट आई एम, मतलब ये जो मुशायदा है चीजों को एक परखना एक अलग से रेफरेंस के साथ, तो वो मुझ में शुरू से है। और ये जो अभी पिछले दिनों को माहौलियाती डे था, तो एक इंजीनियर ने जो वाटर इंजीनियर थे उन्होंने मजमून लिखा, आई डोंट नो इट, तो उन्होंने ये लिखा था कि इट्स रियली अमेजिंग कि आज से 20-25 साल पहले मेरे हवाले से कि उन्होंने पानी का एक गिलास था उसमें पानी जरा कम हुआ था, तो वहां से इंस्पायर होके उन्होंने एक ये नावल लिखा, और तब हमें माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में ज्यादा आगाही थी ही नहीं। और हैरतनाक बात यह है कि बहाव जो है वो ऐसा नावल है कि जो है ही माहौलियाती तब्दीली के हवाले से, तो इल्हाम तो नहीं होता किसी चीज का, और हम इतने पाकीज़ा और मुकद्दस लोग नहीं है कि इल्हाम हो हम पे, ये हमारे अंदर ही है जो शुरू से भर दिया गया। और वो जो कहा था अनल हक
मंसूर बिन इब्ने हुसैन
मंसूर ने, वो हक जो है वो राइटर्स के अंदर होता है, और वो ये हक की तमाम तस्वीरें हम दावे नहीं करते, दावे कर रहे हैं तो सूली पर चढ़ जाना पड़ता है, वो जरा मुश्किल लगता है, लेकिन ये है कि वो अंदर जो सच है जिस तरह फरीदुद्दीन अत्तार के परिंदों का सच है वो भी क्रिएटिव राइटर्स के अंदर होता है, और वो मुख्तलिफ होता है बाकी लोगों से, इंटेलेक्चुअल से, आम लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते। वो मसलन मैं ताजमहल देखने गया तो मेरे साथी थे, तो उन्होंने कहा कि ताजमहल के ऊपर बहुत सारा कुछ लिखा गया, अब इसके ऊपर आप लिखोगे? मैंने कहा थोड़ा बहुत तो लिखूंगा। कहने क्या लिखोगे इसके ऊपर क्या लिखो? तो मैंने कहा कि तुमने नोट नहीं किया, लेकिन मैंने नोट किया कि जमुना की जानिब से एक परिंदा आया, और वो रंगीन था, 2-3 रंगों का था, बड़ा सारा परिंदा था, पता नहीं क्या था, और जब वो आया है तो उसके रंग दिखाई दे रहे थे, बैकग्राउंड में उसके स्काई था ब्लू, और जब वो ताज के आगे से गुजरा है क्योंकि उसकी बुलंदी बहुत है ताज की, तो सफेद हो गया।
अरे
क्योंकि वो ताज सफेद है, वो परिंदा सफेद नजर आ रहा है, और जो ही वो ताज के आखिरी मीनार की जद से बाहर आके फिर उसका पस मंजर आसमान हुआ तो वो फिर रंगीन हो गया। तो کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایٹیٹیوڈ یا یہ نظر ہوتی یا آنکھ ہوتی جو مختلف پرسپیکٹو میں چیزوں کو دیکھتی ہے, جو بیان کیا جا چکا ہے یا دوسروں نے کیا ہے, جو یوزول رٹ ہے منشیانہ, وہ اس سے الگ ہوتا.
تو ادب تو ہر دور میں لکھا گیا تارڑ صاحب, لیکن شاہ پارے وہی صدا بہار رہے جن میں اپنے دور کے حالات اور محسوسات کی عکاسی ہوتی ہے. آج کے نئے لکھنے والوں کی کاوشیں بھی آپ کی نظر میں ہیں, کچھ ابھی ہم اس کے بارے میں بات کر بھی چکے ہیں ڈرامے کی بات کرتے ہوئے, لیکن پھر بھی, اور ابھی آپ نے یہ بھی بات کی کہ یہ ایک نظر کی بات ہوتی ہے, گہرے مشاہدے کی بات ہوتی ہے, سوچ کی بات ہوتی ہے, پھر بھی کیا فرق دیکھتے ہیں؟
میں ایک بات عرض کر رہا ہوں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایک بڑا ناول لکھنے کے لیے ایک طوائف سے لے کے ایک ولی اللہ کے درمیان جتنے طبقے آتے ہیں, اخلاقی طور پہ بھی, انسانی طور پہ بھی, سماجی طور پہ بھی, ان سے آگہی ضروری ہے. اگر آپ ایک بڑا ناول لکھنا چاہتے ہیں, فیلنگ ہے اور میں اس کے اوپر یقین رکھتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ کریٹو جتنے رائٹر ہیں اگر وہ مرد ہیں تو ان میں 30% عورت ہوتی ہے ہمیشہ, کیونکہ اگر وہ ٹوٹلی مرد ہیں تو وہ تو ایک مردانہ قسم کا ناول لکھیں گے نا, اس میں سارے کریکٹر ہی مردوں کے ہوگے, کیوں دے وونٹ نو ویمن, کیونکہ ان کے اندر عورت نہیں ہے, وہ کیسے فیل کر سکتے ہیں کہ پریگنینسی کے ہوتے ہیں یا اس کے عشق کے جو ہوتے ہیں وہ کس طرح محسوس کرتی. تو ہر مرد کے, ہر کریٹو جو ہے رائٹر, اس کے اندر ایک عورت ہوتی. میرے اندر شاید 30% سے کچھ تھوڑی سی زیادہ ہے, کیونکہ میرے جتنے کردار زیادہ ہوئے, مطلب ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ, زیادہ فیمیل سے. اور یہ لاگو ویمن رائٹرز پہ بھی ہوتا ہے, یعنی ویمن رائٹرز جو ہیں بڑی وہی ہوتے ہیں جن کے اندر 40% یا 30% مرد ہوتا ہے. مطلب اپنا یہ جو ہیں, اس میں چپتائی کو لے لیں, اپنی قرۃ العین حیدر کو لے لیں, بانو قدسیہ کو کسی حد تک لے لیں, ان کے اندر ایک مرد تھا, تبھی انہوں نے مرد کردار جو ہیں پورٹنٹ انہوں نے تخلیق کیے.
تو اب کس طرح سے پھر اس کو دیکھا جائے گا کہ کل کا ادب اور آج کا ادب کچھ فرق لگتا ہے, یا وہی جیسا کہ ہم شروع سے بات کرتے آ رہے ہیں کہ ماحول کے تقاضے اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں زیادہ تر؟
دیکھیں, میں کیونکہ اب میری عمر ماشاءاللہ 83 برس ہو گئی, مجھے اتنا پڑھا نہیں جاتا, لیکن میں ساتھ رہنے کی کوشش کرتا ہوں, اور میرا ایمان ہے کہ جو انسانی معاشرہ ہے اور انسانی سوچ ہے اس میں ہمیشہ ارتقاء کا ایک سفر جاری رہتا ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. چنانچہ ایسا نہیں ہے کہ جناب ایک خاص لمحے پہ وہ ارتقاء رک جاتا ہے اور اس کے آگے ادب جو ہے وہ کریٹ ہونا بند ہو جاتا ہے. البتہ یہ ہے کہ ہر معاشرے کے اپنے, اب اس کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کس طرح چیزیں چینج ہوئی ہیں, کس طرح اب میری جو پوتی ہے وہ کس طرح اس کی سوچ ہے, وہ کیا سوچ رہی ہے, اس کا جو ہے کمپیوٹرائز ذہن وہ کس طرف جا رہا ہے, یہ ایک اور دوسرا. تو آج کا رائٹر اسی حساب سے لکھ رہا ہے, لیکن ہمیشہ ایک جو ٹنج ہوتی کلاسک کی وہ چلتی آتی ہے, اور اس میں ندی جو داخل ہوتی ہے نئے خیالات کی, ارتقائی جو تبدیلیاں ہیں وہ ندیاں اس میں شامل ہوتی چلی جاتی ہیں, لیکن اس کی بنیاد وہی کلاسک ہوتا ہے. جس طرح مطلب کہ اگر آپ لیں یونانی المیہ نگاروں کو, ارسٹوفینیز کو لے لیں یا یوروبڈیز وغیرہ کو لے لیں, ان کی جو ٹریجڈیز ہیں آپ دیکھیں کہ ان ٹریجڈیز کو ہی مختلف رنگ میں ہم پیش کرتے چلے آ رہے ہیں. ٹریجڈیز نہیں بدلی, ان کی بنیاد نہیں بدلی, صرف معاشرہ بدل گیا. چنانچہ بہت اچھے اچھے رائٹر آ رہے ہیں, کیونکہ بھائی سر ممبر کہ جب ہم نے شروع کیا تھا 50-60 سال پہلے تو جنرلی کہا جاتا تھا کسی گنجائش ہی نہیں, اب تو ادب میں دیکھے نا بیدی صاحب نے کیا لکھ دیا, اور کرشن نے کیا لکھ دیا, اور پترس نے کیا لکھا, اپیندر ناتھ عشق کو دیکھیے, قاسمی صاحب کو دیکھیے, ممتاز مفتی وغیرہ وغیرہ. تو وہ اس جمگٹے سے ہم بہت سارے لوگ نکلے, اور ان میں عبداللہ حسین بھی تھے, انتظار حسین بھی تھے, اشفاق صاحب تھے, کسی حد تک مجھے بھی شامل کر لیجئے. چنانچہ یہ ارتقاء جاری رہتا ہے, ہم سے اگلی نسل جو ہے وہ بھی بہت اعلیٰ قسم کا ادب تخلیق کر رہی, صرف یہ ہے کیونکہ ہم پیچھے رہ گئے اور وہ ذرا آگے نکل گئے ہیں, کیونکہ اب جو جدید زندگی ہے اس کی حقیقتیں جو ہیں وہ ہمارے موس شدہ جو ذہن ہے आपने वो तारुफ बहार की कहा ना, तो तारुफ खिजां का हो रहा है, तो हमें नहीं आते. तो ये दैट डजंट मीन के बड़ा अदब क्रिएट नहीं किया जा रहा,
बस उसका इजहार बदलता है मुख्तलिफ जमानों के एतबार से और मुख्तलिफ. जी अच्छा, ये आप मुझे बताइएगा, बहुत मुख्तलिफ शोबों में आपने काम किया, शुरू में मैंने कुछ गिनवाए भी, बड़ा मुनफरिद भी रहा, तख्लीकी भी रहा, लेकिन आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि कोई ऐसी ख्वाहिश रह गई हो जो आपने पूरी नहीं की?
मैं बहुत ज्यादा मजहबी नहीं हूँ, लेकिन हर सुबह मगर नमाज पढ़ता हूँ फजर की, तो उसमें मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, और मुझे समझ नहीं आती कि उससे क्या मजीद मांगू मैं सिवाय अपने बच्चों की खुशी के और सेहत के. मेरी तमाम ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं, क्रिएटिविटी की भी और समाजी तौर पे भी और दुनियावी तौर पे भी. मेरी कोई बच्चे माशा, आई फील के ये मेरा बेहतरीन इरा है, जो ये जो उम्र है ये मेरी बेहतरीन उम्र है कि इसमें मेरे बच्चे सेटल हो चुके हैं. मैं मतलब है कि बिल्कुल मेरी और कोई मसरूफियत नहीं, सिर्फ लिखता पढ़ता हूँ. चुनाचे मैं पीछे मुड़के मैंने कहा कि नॉस्टैल्जिया जो है वो मुझ में हरगिज नहीं है, इट्स अ सिकनेस मोस्टली, नॉट ऑलवेज. और मैं जो मौजूदा अहद है उसको मैं इंजॉय करता हूँ. और आई फील के अजीबोगरीब एक आपसे शेयर करूँ, यहाँ मैं ऑरलैंडो आया हूँ तो ऐसे ही मैंने वो सफर जो है लाहौर का थोड़ा सा मैंने कहा कि रिकॉर्ड कर दिया जाए यहाँ पे. तो पहले भी मुझे एहसास हुआ, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज फिनोमेना कि मेरे जहन में वो गैब से तो नहीं आते गालिब की तरह, लेकिन जो भी ख्याल आते हैं मेरे अंदर जो परिंदे हैं सच के या कह लें या कुछ डीमंस भी होंगे, नेचुरली दोनों चीजें साथ चलती. मैं जब लिखने बैठता हूं तो अजीबो गरीब ऐसी फैंटसीज और ऐसी कमाल की तस्वीरें दिन में आती चली जाती हैं, जो मतलब इतनी जरखेजी बढ़ गई है कि सिर्फ फसल नहीं होती बल्कि फसल के साथ साथ नीचे से को गुल बूटे फूटना शुरू कर देते हैं जिनका वहमो गुमान भी नहीं होता. और मैं एक एडमिट करना चाहता हूँ कि एट टाइम्स आई फील कि काश मैंने राख जो है अब लिखा हो, या कुर्बत मर्ग में मोहब्बत या पखेरू या व्हाटएवर. तो ये मैं मतलब कि ओल्ड एज जो है ये किसी को तहकीक करना चाहिए, या क्या ये मेरी ही ओल्ड एज है जिसमें ये क्रिएटिविटी जो है वो मतलब वो जो नदी है वो किनारों से बह निकली.
मेरा ख्याल है कि वो इसमें शायद हमारे जो बिल्कुल तजुर्बे हैं, और खास तौर पर जो आपने कहा, और जब फैंटेसी कोई कर सक में बैठ के देख सकता है अपनी जैसे कहना चाहिए तसव्वुर की आंख से कोई चीज देख सकता है, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि सबके हिस्से में आती है, क्योंकि हम अब जो कंक्रीट में रहते हैं और इस तरह की सॉलिड चीजों के अंदर रहते हैं तो उसमें उसका भी जो किरदार है वो कम से कम होता चला जाता है हमारी जिंदगी में जो एक जमाने में थी.
ऐसे ही मैं आपकी बात कर कि मेरा एक नावल है पखेरू पंजाबी में, 50 साल पहले लिखा है. अब मैंने एक और भगत सिंह की जिंदगी पे लिखा है नावल, वो भी पंजाबी में, ये दो ही मेरे नावल पंजाबी में. तो उसमें परिंदे बातें करते हैं, गिद्ध आपस में बातें करते हैं, इसी तरह फाख्ता में भी है. उसके बाद बहुत सारी जो मेरी किताबें हैं उनमें परिंदे बातें करते हैं, जानवर बातें करते हैं. बल्कि ये कोरोना के हवाले से मेरा जो था शहर खाली कूचा खाली नावल, उसमें एक हिरन मुझसे बातें करता है. और क्योंकि आई फील कि ये सब लोग जो हैं, जो जानवर हैं, ये बातें तो करते हैं ना, ये हमारी समझ में नहीं आती. एक बिल्ली आपके कदमों में बैठी हुई आपको देख रही, कुछ ना कुछ तो सोच रही.
और नहीं बता भी देते हैं, वो बता भी देते हैं, अगर आपकी देखने वाली आंख हो तो आपको बताते हैं वो.
तो वो ये है कि भाई मेरी ख्वाहिश ये थी, अब तो मेरी उम्र नहीं है, कि कोई ऐसा जमाना आएगा कि जब ये जानवर जो है हम इनकी जुबान समझ लेंगे, हम जो कुछ देख रहे हैं वो समझ लेंगे, तब ये अदब कम्प्लीट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. इब्न अल अरबी ने कहा था कि अगर एक दरवेश जंगल में जाता है तो जंगल के जो गुल बूटे हैं वो उससे और पत्थर भी हम कलाम होते हैं, और वो उनका कलाम समझता है और उनको जवाब देने पे कादर. और मैं टोटली बिलीव करता हूँ कि ऐसा ही है, क्योंकि मैंने 16 सफरनामे सिर्फ पाकिस्तानी नॉर्थ के ऊपर लिखे हैं, पत्थरों और नदियों के बारे में और बर्फों के बारे में. तो अगर वो पत्थर वहां के और नदियां और वो सारे मजाहिर जो हैं कुदरत के वो मुझसे कलाम ना करते तो मैं 16 किताबें नहीं लिख सकता.
अच्छा, एक अब आखिरी सवाल, टाइम टनल की हम बात करते हैं. आजकल के जमानों में बड़ा तस्करा होता है, बहुत सारी फिल्में भी इस पे लिखी गई. मुझे ये जाती तौर पर मेरा बड़ा फेवरेट कॉन्सेप्ट है टाइम टनल का, मैं इसको महसूस कर सकती हूँ, मुझे इसमें सफर करने का भी शौक है। तो अगर आप भी टाइम टनल में जाएं और जो गुजरे कल बीत गए हैं उसमें से कुछ तब्दील करना चाहें तो क्या तब्दील करेंगे?
नहीं, मैं तब्दील नहीं करूंगा।
अच्छा,
अगर आप
लेकिन राग तो दोबारा लिखेंगे ना, जैसे आपने कहा राग तो दोबारा लिखेंगे ना।
अच्छा नहीं, अगर देखे ना आपने तो बिल्कुल मुख्तसर कर दिया ना टाइम को, तो मैं उसको जरा पीछे ले जाना चाहता हूँ। मसलन मैं 1400 साल पीछे ले जाना चाहता हूँ।
अच्छा,
मेरी ख्वाहिश होगी कि रसूलुल्लाह सल्लम की ऊँटनी जो कस्बा और साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक जब वो हिजरत कर रहे हैं मदीने को, तो तीसरी ऊँटनी मेरे साथ होती, मेरे पास होती, मैं उनके हमराह होता। मेरा टाइम टर्मिनल तो इस किस्म का है।
अरे वाह, अच्छा। ये जो इसमें जितने सफरनामे लिखे, जितने मुल्कों में गए, जितनी चीजें सोची,
वो ये है कि भाई मसलन प्यार का पहला शहर है
जी,
मैंने कच्ची उम्र में लिखा नादान, और वो कच्चा नावल है और नादान है, लेकिन उसमें जो पैशन है वो अब मुरझा चुके हैं, तो उसके उसको मैं इतना ओन नहीं करता, लेकिन ओन मुझे इसलिए करना पड़ता है कि एक जमाने तक मेरा आधा किचन का खर्चा जो था, किचन का और घर का आधा खर्चा वो इसकी रॉयल्टी से चलता था। अभी माशाल्लाह उसके स्पेशल एडिशन आए और वो मेरा ख्याल 80th एडिशन है, इसी तरह 6-7 किताबों के डीलक्स एडिशन उन्होंने छापे हैं, और सबकी सब 30-30, 40-40 उनके एडिशन आ चुके हैं। और तो वो ये है कि भाई आप ये कहते हैं कि जी अदब जवाल पजीर है, किताब कल्चर, ये आप जैसे लोगों ने ना रेडियो पे बैठे हुए दानिश्वर जो है इन्होंने किताब कल्चर खत्म हो गया, मर गई किताब, ये हो गया, कहाँ किताब कल्चर खत्म हुआ है?
नहीं, किताब नहीं मर सकती।
हवाले दिए हैं 70-70 अगर एडिशन आ रहे हैं, कोई पढ़ रहा है ना, आप देखें कि शफीक रहमान, कर्नल मोहम्मद खान, कुरतुल्लैन हैदर, अब्दुल्ला हुसैन, पितरस, इनके देखें तो सही कितने कितने एडिशन छप रहे हैं। चुनाचे वो एक कॉन्टिन्यूटी अब चली आ रही है। इसमें इधर उधर जाहिर है कि PDF आ गया, वो बड़ा प्रैक्टिकल है, पूरी किताब आप किसी को भेज सकते हैं, कैंडल में आपने ले ली, बाकी सारी मेरे बहुत सारे किताबें हैं उसके ऊपर, बहुत सारी कहानियां हैं जो ये रेख्ता वगैरह पे उन्होंने नरेट की हुई है। तो दे आर डिफरेंट वेज, लेकिन वो सारे मुजतमे जब होते हैं वो किताब की जानो भी।
ये गुफ्तगू मैं और घंटा भर भी जारी रख सकती हूँ आपसे बात करते हुए, लेकिन किसी और वक्त मैं जरूर फिर आपको जहमत दूंगी।
मैं ये अर्ज कर दूं कि भाई मैंने पहले आपको बताया था कि मेरी तरफ से कोई इतराज नहीं है, आप अमेरिकन लोग हैं, आपके पास वक्त की कमी होती मैं तो इलेक्शन जब ट्रांसमिशन करता था तो 3-3 दिन बोलता रहता था, तो इसलिए मुझे उसमें कोई नहीं। और एक आखिरी जो मैं गलत फहमी जो मुझे ना लोग आजकल के जी वो पूरे बरसगीर के हवाले से मेरी फिक्शन के हवाले से कुछ कहते हैं कि जी ये बहुत सीनियर है, पता नहीं क्या बड़े हैं, तो हुआ ये है कि मुझे वो अजीब सा इसलिए लगता है कि मसलन गोपी चंद नारंग ने कहा कि जी हम फिक्शन के 3 हुसैनों को मानते हैं पाकिस्तान में, इंतजार हुसैन, अब्दुल्ला हुसैन और मुसनसर, अब वो 2 रुखसत हो गए, ठीक है
जी।
इसी तरह अब उस वो गए तो हम बड़े हो गए, हम सीनियर हो गए। तो फैज साहब से किसी ने यही पूछा था ना कि फैज साहब आप तो सफे अव्वल के शायर हैं, तो फैज साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था, उन्होंने कहा यही बात यह है कि हम पिछली सबों में ही खड़े हुए थे, वही डिजर्व करते थे खड़ा होना लेकिन अब ये अगली सफें खाली होती गई, लोग रुखसत होते गए, हम आगे होते गए और बिल आखिर हम आखिरी सब पे आ गए। चुनाचे हम अब आखिरी सब में आ खड़े हुए हैं, दैट डजंट मीन कि हमको बहुत अजीम और बड़े राइटर, दैट जस्ट शोज के बाकी जो थे वो रुखसत हो गए और हमें उनकी जगह खड़ा होना पड़ा।
अपनी जगह, अपनी अपनी जगह हर एक की अपनी मुनफरिद जगह होती है। मैं इस बात को बड़े पक्के तरीके से मानती हूँ कि जो आपकी जगह है वो किसी और की नहीं है, और जो किसी और की जगह है वहाँ पे शायद आप नहीं है, तो इसलिए
नहीं, औरों की जगहों पे मैंने कब्जे कर लिए हैं।
वो सही है
ना, पाकिस्तान में कितना है वो कब्जा माफिया, कितना सक्सेसफुल है, तो राइटर ये भी ना करे कि दूसरे के ख्यालात पे कब्जा कर लो।
ख्यालात पे तो नहीं, खैर जगह तो खैर आपकी बहुत सारी है जहाँ पे आपने कब्जा कर लिया और बिल्कुल किसी और को आगे नहीं आने दिया, वो वाला कब्जा माफिया उस हिसाब से ठीक है। बहुत कम होता है कि मैं अपना इंटरव्यू एंजॉय करूँ, मुझे आज बात करके आपसे मजा आया है। आई होप कि आपको भी ये अच्छा लगा होगा बात करना।
नहीं, मैं इतनी देर बातें क्यों करता रहूं अगर अच्छा ना लगे।
बहुत बहुत शुक्रिया मसन साहब, आई एम सो ग्रेटफुल जी, अस्सलाम वालेकुम,
थैंक यू,
बहुत शुक्रिया। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन पॉडकास्ट के साथ बहजत चलाने। पल पल बदलती दुनिया, कल से आज और तब से अब तक के सफर का अहवाल। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से पॉडकास्ट का एक नया सिलसिला। इस सफर में हमारे हमराह रहिएगा।